ساڑھے پانچ سال لگے اور تم چاہتے ہو کہ میں دس منٹ میں آپ کو بتا دوں. کھانا ہے تو چپ چاپ کھاؤ اور دیکھو کہ اس کا اثر کیسا ہوتا ہے. شردھا رکھو. تو شردھا کے ساتھ وہ جب اس دوائی کو گرہن کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی بیماری دور ہوتی ہے, بھلے وہ وسترت روپ سے جانے یا نہیں کہ ان دوائی کے اندر کون کون سے رسائن ہیں. اسی طرح ہرے کرشن مہا منتر کا جاپ کرنے پر ہردے کا شدھی کرن کیسے ہوتا ہے بھلے ہی ہم پورن روپ سے نہ جان پائیں, لیکن اس میں چنتا کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مہا منتر بھی ہمارے ہردے کے اندر اسی طرح کاریہ کرے گا جیسا کوئی دوا ہم پر کام کرتا ہے. اس میں کوئی چنتا کی بات نہیں. تو سارے وشنو دوت یم دوتوں کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ نام کی مہیما ہے. یم دوت گھبرا گئے اور اجامل کو پکڑ کر لے نہیں جا سکے اور شرما کر واپس لوٹ گئے. جب وہ واپس لوٹے تو یمراج کے پاس گئے اور یمراج کے پاس جا کر بڑے کرودھاویش میں کہنے لگے کہ ہے یمراج, ہم نے سوچا تھا کہ 14 لوکوں میں آپ ہی سب سے سروشریشٹھ اور شکتیشالی سوامی ہو, لیکن آج پتا پڑا کہ آپ سے بھی شاید شکتیشالی کوئی ہے. سپشٹ کیجئے کہ وہ کون تھے جو چار پروش ہمارے سامنے آئے اور اجامل کو لے جانے سے ہمیں روک دیا. تو اس سمے یمراج نے کہا کہ دیکھیے, دھرمم تو ساکشات بھگوت پرنیتم, جو دھرم ہے وہ بھگوان شری کرشن سے آتے ہیں. بھگوان شری کرشن ہی پورن پروشوتم بھگوان ہے, وہ تو میرے بھی سوامی ہیں, اور جب ان کے دوت آپ کے سامنے آئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. سوئمبھو نارد شمبھو کمارو کپلو منو نارد جلک بیشو بلیرویاسکم ویم. دیکھیے یہ 12 الگ الگ پرکار کے مہاجن ہیں, یہی جانتے ہیں کہ دھرم کے مولبھوت سدھانت کیا ہیں. اسی لیے آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بھگوان شری کرشن کو جاننا اتنا آسان نہیں. لیکن ہے یمدوتوں, میں یہ سن کر بہت پرسن ہو رہا ہوں کہ آپ کے مکھ سے نارائن کا نام تو نکلا, کیونکہ اس پرسنگ کا ورنن کرتے سمے یمدوتوں نے بتایا کہ اجامل نے مرتیو کے سمے نارائن کا نام لیا تھا. یہ سن کر یمراج بڑے پرسن ہوئے کہ یمدوتوں کے مکھ سے کبھی تو نارائن کا نام نکلا. پھر وہ کہنے لگے, دیکھو کن لوگوں کو میرے پاس لے کے آؤ. جیہوان وقتی بھگوت گن نام دھیس چیتسچ نسمرتی تچرناروندم کرشنائے نشترتی یسمرئے کداپی تان آنیدھومستو کرت وشنو کرتیان. آپ میرے پاس ان لوگوں کو لے کے آؤ جیہوان وقتی بھگوت گن نام دھیس, جن کی جیہوا سے بھگوان کرشن کا نام ایک بار بھی نہیں نکلتا, انہیں میرے پاس لے آؤ. جیہوان وقتی بھگوت گن نام دھیس چیتسچن سمرتیت چرناروندم, جو اپنے من میں بھگوان شری کرشن کے سندر چرن کملوں کا سمرن پورے جیون بھر میں ایک بار بھی نہیں کرتے, انہیں آپ لے کے آؤ. کرشنائے نو سمرت یا چر ایکداپی, بھگوان کرشن کے مندروں میں جا کر کرشن کے سندر ارچ وگرہ کے سامنے جو ایک بار بھی دنڈوت نہ کریں, انہیں لے کے آؤ. تان آنے دھم استو اکرت وشنو کرتیان, آپ بھگوان کے بھکتوں کو مت لے کے آؤ. کیوں؟ اتھم سبرت گدتم بھگوت مہتوم, بھگوان شری کرشن کے بھکت اتنے مہان ہوتے ہیں, بھگوان کو اتنے پریہ ہوتے ہیں کہ بھگوان شری وشنو स्वयं अपने हाथ में गदा लिए इन भक्तों के चारों ओर घूमते रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और यदि आप यमदूत ऐसे भक्तों के निकट जाओगे तो भगवान विष्णु अपनी गदा को लेकर आप पर वार करेंगे और आपको नष्ट कर देंगे। तो जरा बच के रहना, भविष्य में कभी भक्तों के निकट मत जाना, बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है आपके जीवन के लिए। और अंततः कहने लगे, इत्थम सौभ्रत्र गदितम भगवत महित्मम संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरस्ते। यमराज ने तो जीवन में बहुत कुछ देखा और सुना था, यमदूतों ने भी बहुत कुछ देखा और सुना था, लेकिन यमदूतों ने आज तक कभी भगवान और भगवान का नाम और भगवान के भक्तों के विषय में इस तरह का वर्णन नहीं सुना था। तो यमदूत इन वर्णनों को सुनकर विस्मय में पड़ गए और वो सोचने लगे कि भविष्य में हमें सावधान रहना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आम व्यक्ति को भौतिक जगत में यमदूतों से बड़ी घबराहट होती है, यमदूतों से बहुत डरते हैं, लेकिन बेचारे यमदूत भक्तों से बहुत डरते हैं, क्योंकि यमदूत देखते हैं कि भक्तों के निकट जाएंगे तो विष्णु भगवान स्वयं उन पर आक्रमण करेंगे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ये घोषणा करते हैं, तस्मात् संकीर्तनम् विष्णोर् जगन् मंगलमम् हसाम महतामपि कौरव्य विधि ऐकांतम अव्ययम्। इसीलिए तस्मात् संकीर्तनम् विष्णोर् जगन् मंगलम् अमहसाम, भगवान श्री विष्णु उनके शुभ नाम का जब जय घोष और कीर्तन हो, जगन् मंगलम् अमहसाम, तीनों लोकों में जितने भी बद्ध जीव हैं सभी शुद्ध हो सकते हैं, हृदय के प्रत्येक कलमश को हम शुद्ध कर सकते हैं। महताम अपि कौरव्य, चाहे ये दोष या पाप कितने ही बड़े या भयंकर क्यों न हो, चिंता की कोई बात नहीं। विद्धि एकांतम अव्ययम, जानो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ये कलयुग में एकमात्र उपाय है जो हमारे हृदय के प्रत्येक कलमश को दूर करने की क्षमता रखता है, और कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो रामो।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hey, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो इस प्रकार अजामिल उस समय समझ पाया कि भगवान श्री विष्णु की कृपा से मैं मुक्त हुआ हूँ। तुरंत अजामिल ने हरिद्वार जाने का निश्चय किया, बहुत पश्चाताप किया और हरिद्वार में उसने अपना पूर्ण रूपेण शुद्धिकरण किया और उसके पश्चात वैकुंठ से विमान आया और अजामिल उस वैकुंठ के विमान में स्थित होकर तुरंत भगवान के धाम पहुँच गया। बोलिए कृष्ण भगवान की, हरि नाम संकीर्तन की। तो भगवान गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम एक बार भी लेता है तो उसकी रक्षा अवश्य भगवान करते हैं। तो इसी बात को जब हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो लोगों के पास समय नहीं रहता, भगवान का नाम लेने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहता। जब तक लोगों को कुछ इस तरह का नाम जप या चार नियम का पालन के विषय में मत बताओ तब तक कुछ समय तक सुनेंगे, लेकिन अधिक कुछ बोलने जाओ तो तुरंत वो घबरा जाते हैं और भाग जाना चाहते हैं कि ये सब क्या बता रहे हो, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन वास्तव में यही एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन का। श्रीमद् भागवत का श्रवण और कीर्तन भी हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे अंततः सभी स्कंदों का अध्ययन करने के पश्चात हम नित्य क्रम से रोज माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नियमित रूप से कर सकें। जो भी हम अच्छी प्रकार से करते हैं जीवन में हम उसे बहुत अधिक ध्यान देते हैं और पूरे अनुशासन के साथ करते हैं। तो यदि आप भक्ति करना चाहो तो महामंत्र का जाप भी पूरे अनुशासन के साथ नित्य क्रम से करना चाहिए, अन्यथा भक्ति में प्रगति बहुत ही कठिन है। तो हृदय में जितने भी दोष हैं, जितनी भी काम वासना है, उसे दूर करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक बार रावण बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, क्योंकि उसने देखा कि बार बार वो सीता देवी के पास जा रहा है, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सीता देवी मानती ही नहीं। तो रावण बड़ा परेशान गंभीर अवस्था में बैठा था तो उसका भाई कुंभकर्ण ने उसे देखा। कुंभकर्ण ने कहा, भैया रावण, ये क्या हाल बना के रखे हो, 14 लोकों में आपसे अधिक शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, सोने की लंका भी आपके पास है तो आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, बात क्या है, अब बताओ। तो रावण ने कहा, देखो भाई मैं क्या बताऊं, तुम मेरे अच्छे भाई हो, मित्र हो, इसलिए अपना हृदय खोलता हूँ। कि मैं सीता देवी से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं, क्या करूँ? बार बार जाता हूँ, बस एक ही रट लगाए रखती है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं भी परेशान हो गया हूँ, मेरी भी शक्ति कोई सीमा है। तो कुंभकर्ण ने कहा, अरे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो बहुत बड़े योगी हो, बार बार अपना रूप रंग बदल सकते हो, तो ऐसा करो कि तुम प्रभु रामचंद्र का रूप धारण कर लो और सीता देवी के पास जाओ, सीता देवी तुरंत तुमको स्वीकार कर लेगी और बाद में देखी जाएगी। रावण ने कहा, भैया बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यदि मुझे अपना रूप राम जैसा करना है तो राम के रूप पर ध्यान लगाना पड़ता है पहले, और जब मैं राम के रूप पर ध्यान लगाता हूँ तो सीता माँ के समान दिखती है, तो फिर क्या लाभ होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। काम कौन सा, वो हृदय का काम वासना, ये काम नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसा आरोप भी लगाते हैं हरे कृष्ण वालों पे, जहाँ राम है वहाँ कुछ काम नहीं, बस साधु बन के बैठ जाओ, वो काम की बात नहीं कर रहे हैं। हृदय के अंदर जो काम वासना है वो तुरंत दूर हो जाएगी, छू हो जाएगी, यदि राम का नाम निरंतर लोगे तो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम लिया जाता है वहां कोई भी अनर्थ हमें परेशान नहीं कर सकते। तो इस तरह ये अजामिल का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें हरिनाम की विशेष महिमा बताई गई है, इसीलिए हमने इतना समय इसके विषय में चर्चा की है, क्योंकि अंततः कलयुग में बस यही एक उपाय है, कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौर कथित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। एक बहुत प्रसिद्ध चोर हैं जिनका नाम है नारायण। ये नारायण नाम का चोर क्या करते हैं, ये हृदय के अंदर जो हमने अनेक जन्मों से पापों को एकत्र कर संचित करके हृदय के तिजोरी में छुपा के रखा है, इसे चुराते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम है यदि हृदय के अंदर के दुखों को नारायण नाम के चोर आके चुराएंगे तो, क्या समस्या है? हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चिंताएं ये सब कूट कूट कर भरी हैं, अंदर हम छुपा कर रखते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं कि नहीं नहीं हम ये किसी को लेने नहीं देंगे, लेकिन वास्तव में ये मूर्खता है। नारायण के नाम को कान के माध्यम से हृदय तक पहुंचने दो, बस बाकी काम वो चोर कर लेंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रसिद्ध चोर बहुत प्रसिद्ध चोर हैं, क्योंकि जहां पर भी इन्होंने डाका डाला है कभी फेल नहीं हुए हैं, जहां भी इन्होंने किसी के हृदय में प्रवेश किया है कभी विफल नहीं हुए हैं। भौतिक जगत में तो ऐसा कई बार होते रहता है, लेकिन भगवान जो भी करते हैं परिपूर्ण परफेक्ट करते हैं। तो यदि आपके हृदय में वो डाका डालेंगे तो हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने भी पहाड़ इसके हैं सबको चुरा के लेके जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भगवान का दूसरा नाम है हरि अर्थात चोर। हाल ही में हम कुछ जेल प्रोग्राम करने के लिए गए थे यरवड़ा जेल पुणे में, जहां पर 3000 कैदी हैं और सभी जो लाइफ सेंटेंस पे हैं, तो उनको प्रचार करते करते इस बात का वर्णन किया कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, हमारे नेता एक चोर हैं, हरि सबसे बड़े चोर, तो आइए आप सभी हमारे गैंग में शामिल हो जाइए, क्योंकि हम सब भगवान श्री हरि के भक्त हैं, और जैसे हरि हृदय के अंदर प्रवेश पाते हैं हृदय के अंदर के सारे कलमशों को दूर करते हैं। तो हम नम्र निवेदन करते हैं जिन उन लोगों से जो भगवान का नाम अभी तक नियमित रूप से नहीं लेते, कि रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अपने जीवन में कीजिए। सुबह उठकर स्नान करके एकांत स्थान में बैठकर ध्यान लगाकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नियमित रूप से दो माला, चार माला, छह माला जितना आप कर सको यदि करोगे तो देखिए धीरे 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 हृदय के अंदर के सारे दोष और कलमश दूर हो जाएंगे, क्योंकि अंततः हरि कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा हृदय का परिवर्तन हो। यहाँ पर हम मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए आए हैं, हृदय परिवर्तन के लिए आए हैं। तो इसीलिए जब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा तब तक हम श्रीमद् भागवत प्रवचन का पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। इसीलिए रोज नियमित रूप से महामंत्र का जाप कीजिए, ये हमारी आपसे नम्र निवेदन है। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए छठे स्कंद में एक दूसरा बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। स्वर्गलोक की बात है। स्वर्गलोक में एक बार इंद्रदेव अपने महल में बैठे थे, तब उनके गुरु बृहस्पति आए, और जब गुरु उनके बृहस्पति जी आए, इंद्रदेव अनेकानेक अप्सराओं के नृत्य में मग्न थे और उन्होंने अपने गुरु को आते हुए नहीं देखा और ध्यान नहीं दिया, उनको दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो उनके गुरु बड़े क्रोधित हुए और तुरंत वहां से उठकर चले गए। तो इंद्रदेव ने देखा कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है, मैंने इतना बड़ा अपमान कर दिया है, मेरे गुरु यहां पर आए लेकिन मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। और इंद्रदेव चारों दिशाओं में ढूंढने लगे कि उनके गुरु कहाँ हैं जिनसे वो उनसे क्षमा याचना करें, लेकिन चारों दिशाओं में उन्हें बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले, क्योंकि वो क्रोधित होकर चले गए थे, कहीं जाकर छिप गए थे। तो जो व्यक्ति धन और संपत्ति में बहुत अधिक आसक्त होता है वो आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे कम रुचि लेने लगता है, और कोई उसे जाकर प्रचार भी करे तो ध्यान से नहीं सुनता, और खासकर किसी के पास सत्ता हो जैसे इंद्र के पास, वो उस सत्ता में इतने उन्मत्त और पागल हो जाते हैं कि देख नहीं पाते कि साधु जनों का भी हमें आदर करना चाहिए। लोग चाहते हैं कि पूरे देश भर में राम राज्य फैल जाए, अनेकानेक घोषणाएं होती हैं कि हमारी पार्टी राम राज्य के लिए काम करेगी, लेकिन कैसे राजनीतिज्ञ हैं देखिए, राजनीतिज्ञ क्या राम के विषय में सोच रहे हैं? नहीं, वो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के विषय में सोच रहे हैं। यदि राजनीतिज्ञ अपनी इंद्र तृप्ति के विषय में सोचे तो देश का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा? एक तो ऐसे राजनीतिज्ञ थे दक्षिण भारत में, मुख्यमंत्री थे, और उनके घर पर जब रेड पड़ा तो उनके घर से 10,000 जूते मिले अलग अलग प्रकार के। अब भला सोचिए, जो लोग इतना परिश्रम करके अपना टैक्स भरते हैं उन सब का धन 10,000 जूतों के लिए प्रयोग किया गया एक व्यक्ति ने, मतलब वो 10,000 पैर तो दो हैं, 10,000 जूते पहनने तो उनको विराट रूप दिखाना पड़ेगा तब जाके पहन सकते हैं, एक व्यक्ति चाहे कैसे पहन सकता है? लेकिन इंद्र तृप्ति की भावना हो तो व्यक्ति सोचता नहीं क्या सही है क्या सही नहीं है। तो जो व्यक्ति नेता के पद पर हो उसके हृदय में नम्रता होनी चाहिए, और वो नम्रता तब आ सकती है जब भगवान और उनके भक्तों के प्रति आदर की भावना हो। इंद्रदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि मैं ही यहाँ स्वर्गलोक का राजा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, और इसीलिए उसके गुरुदेव उनसे रुष्ट होकर चले गए। तब इंद्रदेव की समझ में आया कि मैंने जो किया है ठीक नहीं किया, और इंद्रदेव हृदय में बहुत पश्चाताप करने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, अब पश्चाकर क्या होगा। तो इसलिए इंद्रदेव ने तुरंत सभी देवताओं से कहा क्योंकि मैंने इतना महान अपराध किया है, अब मेरी सारी शक्ति चली गई, मुझे क्षमा करें, मैं अब आपका नेता नहीं बन सकता। उस समय राक्षसों को पता लगा कि देवताओं की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि इंद्रदेव ने अपराध किया। राक्षसों ने तुरंत आक्रमण किया, और जैसे ही राक्षसों ने आक्रमण किया, इंद्रदेव थे ही नहीं, और सारे देवतागण बिना इंद्रदेव के नेतृत्व में क्या करते, सारे के सारे हार गए। जब वो हार गए, दुखी हुए, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, ब्रह्मा जी बचाइए हमें, देखिए हमारे जीवन में क्या हाल हुआ है, सारे राक्षसों ने हम सभी को बुरी तरह हरा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक महान भक्त के प्रति अपराध किया। वैष्णव अपराध, भक्त के प्रति अपराध इतना भयंकर होता है कि कोई व्यक्ति इससे नहीं बच सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहने लगे, अब राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बड़ी नम्रता के साथ बड़े प्रेम से सेवा की है, इसीलिए उनके अंदर बहुत शक्ति आ गई है, और तुमने बृहस्पति को रुष्ट करके भगा दिया, इसीलिए तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो गई। अब मेरे पास क्यों आते हो, मैं क्या तुमको बचा सकता हूँ? बोला, अरे ब्रह्मा जी कुछ तो कीजिए, आप ही तो हमें बचा सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, यदि बचना चाहते हो तो एक दूसरे गुरु को स्वीकार करो, बिना मार्गदर्शन के तुम्हारा कोई भला नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, किसे स्वीकार करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाइए और विश्व रूप को स्वीकार कीजिए। विश्व रूप बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण है, और वो आपका उचित मार्गदर्शन करेगा। देवताओं ने कहा, ठीक है। विश्व रूप के पास गए, और विश्वरूप के पास जाकर निवेदन करने लगे कि प्रिय विश्वरूप, कृपा करके आप हमारे गुरु बन जाइए, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं, हमारे गुरु हमसे रुष्ट होकर चले गए, और देखिए सारे राक्षस हम पर आक्रमण कर रहे हैं, और राक्षसी प्रवृत्तियों का यहाँ पर बहुत ही बोलबाला हो चला है, जब तक आप हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तब तक हम कभी राक्षसों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। विश्वरूप ने कहा, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, हम आपको ऐसा अस्त्र देंगे जिसका नाम होगा नारायण कवच, और इस नारायण कवच को आप एक बार स्वीकार कर लो तो फिर कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, नारायण कवच क्या है? विश्वरूप ने उन्हें संपूर्ण नारायण कवच बता दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए और आकर विश्वरूप के आदेश के अनुसार उस नारायण कवच को अपने ऊपर बांधने लगे। मंत्रों के माध्यम से, विश्वरूप की शक्ति से धीरे धीरे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन इंद्रदेव ने एक दिन विश्वरूप के ऊपर ध्यान पूर्वक दृष्टि डाली तो उन्हें विश्वरूप के अंदर कुछ संशय आया। वो क्यों? क्योंकि विश्वरूप अपने एक हाथ से देवताओं के नाम पर यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ की अग्नि में आहुति दे रहे थे, लेकिन दूसरे हाथ से, पीछे से धीरे धीरे वो राक्षसों के नाम पर भी आहुति दे रहे थे, छल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि विश्वरूप अपनी पिता की ओर से देवताओं से संबंधित थे और अपनी माता की ओर से वो राक्षसों से संबंधित थे, इसीलिए वो चाहते थे कि क्यों न मैं राक्षसों का भी कुछ भला करूं, और इसीलिए वो राक्षसों के लिए भी आहुति दे रहे थे। तो इंद्र ने देखा, मैंने विश्वरूप को देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए यहां नियुक्त किया है, लेकिन ये विश्वरूप यज्ञ में राक्षसों के नाम पर आहुति दे रहा है, ये मेरे साथ छल कर रहा है। तो जो व्यक्ति छल करे अंततः उसका छल अधिक समय तक नहीं चलता। भगवान गीता में अर्जुन को कई बार कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रामाणिक रूप से मेरी शरण लो, छल मत करो। भौतिक जगत में यदि व्यक्ति किसी भी अवस्था में छल करेगा, झूठ बोलेगा या भगवान या उनके भक्तों को धोखा देने का प्रयास करेगा, तो अंततः वो सब कुछ लौट कर उसी के ऊपर आता है और अधिक मात्रा में आता है, क्योंकि कर्म के नियम बड़े शक्तिशाली होते हैं। कर्म के नियमों से कोई नहीं बच सकता। विश्वरूप को लगा मैं चुपके से धोखा करूंगा, किसको मालूम पड़ेगा, किसको पता लगेगा। लेकिन इंद्र को जब पता लगा तो उसने विश्वरूप के साथ ऐसा कार्य किया कि विश्वरूप के तीनों सरों को उसने तलवार से काट दी। तो विश्वरूप की ऐसी गति हुई कि उसने सोचा भी नहीं था कि छल करने का ये परिणाम होगा। तो यदि हम भगवान या उनके भक्तों को धोखा देना चाहेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अंततः हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। एक बहुत ही कंजूस राजा थे। उस राजा के घर में एक बार कई वर्षों के बाद संतान की उत्पत्ति हुई। उस राज्य में सभी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन बेचारे राजा बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि अभी उनको सबको दावत देनी होगी, क्योंकि राज्य के सभी लोग पहुंच गए, राजा को कहने लगे बधाई हो राजा, बधाई हो, दावत कब होगी। राजा परेशान थे कि इतनी बड़ी फीस्ट देनी होगी पूरे राज्य को, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, क्या होगा, मेरा सारा राजकोष खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, इस दिन सब लोग आ जाओ, आपके लिए एक विशेष फीस्ट का आयोजन हम करेंगे। तो शहर के जितने लोग थे, राज्य के सारे लोग आ गए, बैठ गए। राजा ने अपने नौकरों से कहा सबको थाली बांट दो। सबके सामने थाली आ गई और सबके प्लेट में दो दो लड्डू रख दिए गए। और उसके पश्चात सब लोग बैठे थे, रुके थे, और कुछ आएगा, और कुछ आएगा, और कुछ आएगा, कुछ आया ही नहीं। 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, कोई दूसरा आइटम आ ही नहीं रहा था। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे हो क्या रहा है, ये फीस्ट के लिए बुलाया है या ये फास्ट को तोड़ने के लिए कुछ दे रहे हैं, है क्या, दो लड्डू से हमारा क्या होगा। तभी राजा उनके सामने आए और राजा कहने लगे देखिए नागरिकों, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या चल रहा है, हमारे प्लेट में केवल दो लड्डू हैं, नहीं चिंता मत कीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो ये कि हर लड्डू के साथ आपको 5 रुपए इनाम दिए जाएंगे। यदि आप एक लड्डू खाओगे तो एक लड्डू के साथ 5 रुपए, दो लड्डू खाओगे 5 और 5 10 रुपए, जितने लड्डू खाओगे उस लड्डू के साथ साथ 5-5 रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो जितना जो लड्डू खा सकता है खाओ। तो सारे नागरिक प्रसन्न हो गए, वाह ये तो बड़े विचित्र प्रकार का फीस्ट है, ये तो बहुत ही भयंकर फीस्ट है, और सब तैयार हो गए। तभी राजा ने कहा लेकिन एक नियम है कि फीस्ट खाते समय आप अपने हाथ को नहीं मोड़ सकते, चाहे कितना लड्डू खाना है खाओ, लेकिन हाथ यहां से मुड़ना नहीं चाहिए, अब खाओ। तो सारे नागरिक बोलने लगे वाह राजा वाह, कंजूसी की भी हद होती है, एक संतान हुआ वो भी पुत्र, लेकिन दो लड्डू भी चैन से खाने नहीं देना चाहते आप। तो सभी नागरिकों ने निश्चय किया और सब लोग गोल बैठ गए और दूसरे के प्लेट में हाथ डाला और उसे खिलाने लगे, दूसरे तीसरे के प्लेट में हाथ डालकर उसको खिलाने लगे। सब एक दूसरे को खिला रहे थे और सब अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे कि कितने ने कितने लड्डू खाए, और सब जाकर राजा के पास पहुंच गए, बोले राजा 50 लड्डू मेरे, निकालो 250 रुपए। कोई 100 लड्डू खाए थे, सब अपने अपने स्कोर लेकर गए। और राजा सोचने लगा पहले सबको एक थाली दे दिया होता भरपेट भोजन तो सस्ते में निपट जाता, लेकिन यहाँ मैं इन सबको धोखा देने गया तो देखो अंततः क्या हो गया। तो मैं किसी को धोखा देने जाऊंगा तो अंततः परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, वो मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे, फिर मुझे भगवान ही याद आएंगे और गीता का वो श्लोक याद आएगा, द्यूतः क्षलयताम अस्मि, कि सभी प्रकार के जो द्यूत क्रीड़ाएं हैं उनमें मैं हूँ, क्षलयताम अस्मि, मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को कोई धोखा नहीं दे सकता, भगवान और उनके भक्तों को कोई धोखा देने जाए तो वो बच नहीं सकता। विश्वरूप को लग रहा था कि शायद मैं देवताओं की आंखों में धूल झोंक सकता हूँ, लेकिन अंततः उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंततः ठहरे वो ब्राह्मण, तो इंद्रदेव बहुत पश्चाताप करने लगे और उन्होंने अपने प्रायश्चित करने की व्यवस्था की। लेकिन दूसरी ओर इंद्रदेव ने इस तरह का कार्य किया कि विश्वरूप की हत्या की, यह देखकर विश्वरूप के पिता जिनका नाम था त्वष्ट, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिससे इंद्र को मार सकें, और उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे भयंकर राक्षस का निर्माण किया जो इंद्र को मार सके। तो कहने लगे उस यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते समय इंद्र शत्रु विवर्धस्व, लेकिन उस मंत्र को बोलते समय शत्रु के बदले वो शत्रोह कह दिए, तो उस मंत्र का अर्थ ही पूरी तरह बदल गया। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो इंद्र को मारे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंद्र शत्रोह कह दिया इसलिए जो व्यक्ति अंदर से निकला वो था जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। तो वो थे वृत्रासुर, जिनका विशाल काय, भयानक काला शरीर जैसे ही उस यज्ञ की अग्नि से निकला जोर जोर से चिल्लाने लगे, हंसने लगे, कूदने लगे। उनकी दाढ़ी और मूछें और सर के बाल लाल लाल थे, उनके आंख कोयले के अंगारों के समान बुरी तरह प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी घबरा जाता, और इतनी जोर जोर से वो धरती पर नाच रहे थे कि पूरी धरती हिल रही थी ऊपर और नीचे। इतने विशाल थे कि आसमान तक उनका सर पहुंच रहा था, और उनको देखकर सारे राक्षस बहुत प्रसन्न हुए, और राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध आरंभ हुआ, ऐसा घमासान युद्ध जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। और उस युद्ध में वृत्रासुर केवल दो कदम रखते तो सारे देवतागण उनके पैर के नीचे कुचल जाते। जितने भी अस्त्र शस्त्र देवतागण वृत्रासुर के ऊपर फेंकते, वृत्रासुर अपना मुंह खोलते और उसे खा लेते। तो वृत्रासुर के ऊपर किसी भी अस्त्र का कोई असर न हुआ। तो ये देखकर देवतागण भी घबरा गए, कहे अभी क्या करें, भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान श्री विष्णु के पास, और सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे, भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। तो देखिए देवता गण भी भागते हैं भगवान के पास, क्योंकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पाते, उनकी समस्याओं का समाधान भी भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर प्रार्थनाएं की, तो भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर उनके समक्ष आए, और जैसे ही वो उनके सामने आए सबसे पहले उन्होंने देवताओं को डांटा, कहने लगे आपने इतनी प्रार्थनाएं की केवल इसीलिए कि मुझे बुलाकर अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करो, आप जानते नहीं कि जीवन का लक्ष्य मेरी भक्ति है। तो वास्तव में कोई व्यक्ति भगवान के पास भौतिक इच्छाओं के साथ जाता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मांगे, यही बड़ा मूर्ख। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के निकट आता है और मांगता है विषय सुख, भगवान सोचते हैं अमृत छाड़ी विषय मांगे, अमृत को छोड़कर ये विषय भोग मांग रहा है, विष मांग रहा है, ये बड़ा मूर्ख, ये तो बड़ा मूर्ख है। तो भगवान क्या करते हैं, अमिविज्ञा यही मूर्खे विषय के न दीवा स्वचरणामृत दिया विषय बुलाईवा। भगवान कहते हैं देखो ये तो सामने वाला मूर्ख है, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, ये मूर्खतावश मुझसे भौतिक इच्छाओं की कामना कर रहा है। अमिविज्ञा यही मूर्खे विषय के न दीवा, मैं इसको भौतिक इंद्र तृप्ति क्यों दू, स्वचरणामृत दिया, मैं अपने चरण कमलों की सेवा देता हूं इसे, और जब वो इस अमृत का पान करेगा विषय भुलाएगा, भौतिक इंद्र तृप्ति वो तुरंत भूल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति की मांग से प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं ने जब अपनी समस्या व्यक्त की तो भगवान ने कहा कि निश्चिंत रहो, जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, तो वो जब अपने देह को त्यागेंगे तो उनकी अस्थियों से एक सुंदर अस्त्र का निर्माण करो जो होगा वज्रास्त्र, और उस वज्रास्त्र से आप वृत्रासुर को मार सकते हो, क्योंकि दधीचि मुनि के पूरे देह पर भी नारायण कवच का प्रभाव है। ये सुनकर सारे देवतागण अश्विनी कुमारों को आगे रखकर दधीचि मुनि के पास गए। दधीचि मुनि के पास अश्विनी कुमारों को लेके गए क्योंकि अश्विनी कुमारों के ऊपर दधीचि ऋषि की काफी कृपा थी। क्योंकि एक बार हुआ यूं कि अश्विनी कुमार दधीचि ऋषि के पास आए थे और कहा था कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान दो, तब दधीचि ऋषि ने कहा कि कुछ समय के बाद आना। तभी इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने दधीचि को कहा कि देखो ये अश्विनी कुमार स्वर्गलोक के डॉक्टर हैं, इनको डॉक्टर बने रहने दो, इनको गहरा आध्यात्मिक ज्ञान मत दो, मैं आपको ये चेतावनी देता हूं यदि आप इनको ये वेदांत का ज्ञान दोगे तब हम आपके सर को धड़ से अलग कर देंगे। तो बाद में जब अश्विनी कुमार आए तो दधीचि ऋषि ने कहा कि देखो इंद्रदेव ने मुझे धमकी दी है। अश्विनी कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात, इसमें क्या समस्या है, जहां तक सर का प्रश्न उठता है लाओ आपके सर को हम काटकर अलग रखते हैं और आपके सर पर हम एक घोड़े का सर रखते हैं और उस घोड़े के सर से अश्विनी कुमारों को दधीचि ऋषि ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, इसलिए उनका नाम अश्वशिरा भी है। और उसके पश्चात इंद्रदेव वहां पर आए, इंद्रदेव क्रोधित हुए, इंद्रदेव ने दधीचि ऋषि को कहा देखो मैंने तुमको पहले चेतावनी दी थी, तुमने इनको आध्यात्मिक ज्ञान क्यों दिया, इसलिए मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग करूंगा, सर काट दिया। अश्विनी कुमार निकट खड़े थे, उन्होंने उनका असली सर उठाया और वापस रख दिया और उन्होंने अपनी विद्या से वापस दधीचि ऋषि को अपना जीवन सौंप दिया। तो उस दिन से दधीचि ऋषि अश्विनी कुमारों के प्रति बड़े कृतज्ञ थे। तो अश्विनी कुमारों को लेकर जब वो गए तो दधीचि ऋषि ने कहा कि क्या चाहिए, क्या भिक्षा मांगते हो। तो दधीचि ऋषि को देवताओं ने कहा आपका शरीर चाहिए, आपका देह चाहिए, कृपा करके आप अपने देह को त्याग दीजिए। सोचिए क्या भिक्षा है, कैसी भिक्षा है, कोई आकर हमसे कुछ धन की भिक्षा करे तो हम चार बार सोचते हैं, कोई हमसे आकर कहे कि थोड़े समय दे दो हमें तो हम चार बार सोचते हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि देह को त्याग दो। तो उस समय अश्विनी कुमारों की बात को सुनकर उत्तर दिया दधीचि ऋषि ने, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षण भंगुरै नोपकुरतात अस्वार्थेर मर्त्य स्वज्ञाति विग्रहै। ये भौतिक शरीर है, अहो दैन्यम अहो कष्टम, बस बार बार कष्ट ही देता रहता है, समय समय पर अलग अलग प्रकार की व्याधियां होती रहती हैं, तो क्या करें, पारक्यै क्षण भंगुरै, क्षण भंगुर है, समय के साथ ये नष्ट होगा और अंततः अग्नि को प्राप्त होगा और चील और गीदड़ इसे खा जाएंगे मृत्यु के पश्चात। तो इस शरीर में रखा ही क्या है? अहो दैन्यम अहो कष्टम। इसीलिए नोपकृत्यात् अस्वार्थैर। तो यदि मुझे ये अवसर मिलता है कि मैं इस शरीर का प्रयोग दूसरों की भलाई में लगा दूं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। क्योंकि शरीर तो अंततः नष्ट होने ही वाला है, क्यों न इस शरीर का प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उस व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक कर दूसरों को ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना है। क्योंकि अंततः ये शरीर तो नष्ट ही होने वाला है, कोई इस शरीर को बचा नहीं सकता। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा भटक रही है, जीवन है, दूसरों का थोड़ा बहुत भला कर दो, क्योंकि ये शरीर तो अंततः नष्ट होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, हमारे शरीर के सारे अंग धीरे धीरे गलने लगते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, और हमारे जितने भी दांत हैं वो गिरने लगते हैं। वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, और वृद्धावस्था में हमें हाथ में दंडा पकड़कर चलना पड़ेगा।